ओम शांति। हम माँ के बारे में अव्यक्त संदेश पांचवा दिन 29/6/65। आज वतन में भोग स्वीकार कराने के बाद माँ ने सब बच्चों की याद में हमको किट्टी खिलाई। बाबा बोले कि बच्चे समझते हैं कि माँ से हमको ही इतना प्यार है, लेकिन बाबा का भी तो माँ से प्यार है, इसलिए वतन में बुला लिया। फिर मुस्कुराते हुए बोले, बच्चे समझते हैं कि माँ हमें भूल गई है, लेकिन नहीं, माँ तो अब भी बच्चों की सेवा में है। साकार में तो जहाँ रहती थी वहाँ ही सेवा कर सकती थी, लेकिन अब तो जहाँ चाहे एक सेकंड में वहाँ पहुँच सकती है। मम्मा बोली, जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। जैसे मैं सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि माँ कैसे सेवा कर रही है। इन तीन दिनों में बच्चों की सूक्ष्म में सेवा कैसे की वो आगे सुनाऊंगी। उसके बाद हमने पूछा, आपका जब आह्वान कर रहे थे तो उस समय आपको क्या अनुभव होता था? मम्मा बोली, आप सबके योग के आह्वान का प्रवाह पहुंचता तो जरूर था, लेकिन मेरा तो इस शरीर से संपूर्ण ही संबंध टूट चुका था, इसलिए फिर से वापस कैसे आ सकती थी। भले ही खींच होती थी और ऐसे महसूस होता था जैसे कोई चीज को अनेक चीटियां चटक जाती है और घसीट घसीट कर ले जाती है, वैसे सूर्य की किरणों समान माइट की तारे हम आत्मा को आकर्षित कर घसीट रही थी, लेकिन कर्म बंधन खत्म होने के कारण संकल्प ही नहीं उठता था कि जाना है, तो कर्म कैसे हो सकता था। तो क्या सुना? मम्मा बोली कि मैं जैसे सूक्ष्म रूप में हूँ वैसे तुम भी आत्मा रूप में रहेंगे तो महसूस कर सकेंगे कि मम्मा कैसे सेवा करती थी। तो सूक्ष्म वतन की बातें अगर जाननी है तो आत्मिक स्वरूप में रहना पड़ेगा, हल्का रहना पड़ेगा। कल का है ना, सब कुछ बाप को दे दो जो हल्के है। संपूर्ण जो श्रीमत पर है मनमत मिक्स नहीं है, तो वहां की बातें स्पष्ट दिखाई देगी, स्पष्ट अनुभव होगी, सीन सीनरी। तो सूक्ष्म रूप में आत्मा रूप में रहना। फिर ये तीन दिनों में बच्चों की सूक्ष्म सेवा कैसे की वो आगे सुनाऊंगी। इसके बाद हमने क्या पूछा कि जब हम आह्वान कर रहे थे उस समय आपको क्या अनुभव होता था? एक आत्मा जो शरीर छोड़कर चली गई है उसको आह्वान किया जा रहा है, तो उसको क्या अनुभव होता था? आप सबके योग के आह्वान का प्रभाव पहुंचता तो जरूर था, परंतु मेरा इस शरीर से संपूर्ण ही संबंध टूट चुका था, इसलिए फिर वापस कैसे आ सकती थी। भले ही खींच होती थी ऐसा महसूस होता था जैसे कोई चीज को अनेक चीटियां चटक जाती है और घसीट घसीट कर ले जाती है। देह से स्वतः ही वैराग्य की अवस्था है, मृत्यु, आत्मा निकल गई है, शरीर से संपूर्ण ही संबंध टूट चुका है, कोई तादात्म्य नहीं शरीर से। अब वैसे सूर्य की किरणों समान माइट की तारे हम आत्मा को आकर्षण कर घसीट रही थी, लेकिन कर्म बंधन खत्म होने के कारण संकल्प नहीं उठता था कि जाना है। तो ये को योग का अभ्यास भी है कि मैं आत्मा इस शरीर से बाहर हूं, अब इस शरीर की मृत्यु हो चुकी है, तो इस शरीर में क्या है, जो भी कर्म बंधन थे सब समाप्त हो चुके हैं, अपनी ही आंखों से अपनी मृत्यु देखना, ये एक योग का प्रयोग है। हम इस शरीर से बाहर है, शरीर पड़ा हुआ है, अभी उसमें कोई चेतना नहीं है, संपूर्ण मृतवत अवस्था में है वो, और फिर उसमें जाकर देखने का भी अभ्यास करना कि अभी बीच में जाकर देखे क्या होता है। और आगे बोला, फिर मम्मा ने सुना है कि सारी रात जब आह्वान कर रहे तो बीच में दो बार बाबा ने मुझे इसी शरीर में चक्कर लगाकर आने के लिए भेजा था कि अनुभव करो कि शरीर के बंधनवश आत्मा का क्या हाल होता है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो कैसा अनुभव होता है, वह अनुभव करके आओ। रात भर योग किया होगा ना,
हाँ
क्या बोलते हैं, आ जाओ आ जाओ, भेजो वापस। तो ये एक अनुभव, कौन सा, कि आत्मा जब अभी शरीर में है तो उसका क्या अनुभव है, और जब शरीर से बाहर निकल जाए, शरीर की मृत्यु, आत्मा बाहर, फिर वो आए तो उसका क्या अनुभव। ये अनुभव करने के लिए बाबा ने भेजा कि अनुभव करो कि शरीर के बंधनवश आत्मा का क्या हाल है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो क्या अनुभव होता है। परंतु ये अनुभव मृत्यु के बाद नहीं करना है, अभी करना है कि मैं आत्मा इस शरीर में हूं और अभी इस देह की मृत्यु हो गई है तो दो अवस्थाओं का क्या होता है। अपनी ही मृत्यु को देखना, हम निकल गए शरीर से, मृतवत है शरीर, अभी ले जा रहे हैं लोग, वो भी हमें हमें नहीं ले जाना है, दूसरों का काम है, क्या करना है वो देखेंगे, ये हमारी चिंता ही नहीं है, हमको वहां पर भी चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको गाड़ना है या जलाना है वो देखेंगे। तो अच्छा है ना। नहीं, हम यही सोचे, हम सोचे निकल जाए बस, लेके जा रहे लोग मरगट शमशान घाट पर, और क्या चर्चा चालू है लोगों की। हम तो सोच रहे थे हम बहुत ही महान हैं, हम सोच रहे थे हमारे जैसी सेवा कोई करता नहीं है, हम सोच रहे थे लोग बड़े प्रभावित है, और हमारे जाने के बाद लोगों की क्या चर्चा चालू है।
मरने के बाद थोड़ा
अच्छा करते हैं,
खराब
कम होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुरक्षित रहते हैं ना बोलते समय, सुरक्षा। हाँ, मतलब अच्छा बोलने के बाद में हमारी जो हमारा जो दर्जा है वो कम होने का कोई चांस नहीं है, हमारी जो स्टेटस है वो मेंटेन रहता है, सुरक्षित रहता है, अहंकार हमारा घायल नहीं होता है। नहीं तो हमारे अहंकार को चोट लगती है किसी की तारीफ करते समय, पर अभी जिसकी तारीफ कर रहे वो तो गया, तो इसके लिए हम मुक्त है थोड़ा तारीफ करने के लिए। फिर भी कोई ना कोई तो होगा ही कुछ कहने वाला। हाँ, अंदर की बात है, बाहर से तो अच्छा ही बोलेगा पर अंदर से तो सोचता हूँ अच्छा ही हुआ बीच गया। फिर टाइम देखेंगे, हम मृत्यु शैया वो उसके ऊपर डाल दिए गए, अभी बस आग लगने वाली है। ये सीन इमर्ज करना, अपना अपनी मृत्यु अपने आंखों से देखना।
कुछ देर तो आग लगने के बाद भी निकल आते
हैं। निकल आते
एक बार एक भाई ओम शांति भवन में अनुभव सुने ना, दादी प्रकाश मणि जब थे, तो आग लगा दिया गया और उस टाइम ऐसा चेकिंग हुआ तो निकाला गया, बोला हमारा नया जन्म हुआ। अभी भी हम 5 साल जिंदा है।
बहुत कम होता है। हाँ, वो सात दिन के बाद निकला बाहर। वो कल जो सुनाया था ना किरलियन फोटोग्राफी, वो तो कहता है किरलियन फोटोग्राफी कहती है कि 3 दिन तक वो 3 दिन तक वो ऊर्जा निकल विसर्जित होती रहती है, ऊर्जा के छल्ले जिसको कहते हैं, वो रेडिएशन जाते रहते हैं। इसके लिए तो भारतीय संस्कृति में 3 दिन के बाद हड्डियां जमा करते, अस्थि तीसरा कहते हैं जिसको, वो 3 दिन के बाद, वैज्ञानिक कारण शायद ये। और मृत्यु चालू होती है 6 मास पहले ही, पहले मृत्यु सूक्ष्म शरीर की होनी चालू हो जाती है और फिर उसका असर स्थूल शरीर पर पड़ता है। तो 3 मास, 6 मास पहले और 3 दिन बाद तक, मतलब 3 मास पहले, 6 मास पहले से तो मृत्यु जैसे पता चल जाता है उसको कि जाने वाले हैं, और इधर 3 दिन तक, और हाँ वही तो कह रहा हूँ, इसमें फिर घटना का क्या, दुर्घटना का क्या संबंध है? अगर ये सत्य है तो जो अचानक अकाले मृत्यु, असामयिक मृत्यु जो होती है, और उसमें भी देखा गया है, जो कल ही सुनाया था ना कि एक व्यक्ति का वो किरलियन फोटोग्राफी लिया तो देखा उसके एक हाथ से ऊर्जा विसर्जित नहीं हो रही है, एक हाथ से ऊर्जा ही नहीं निकल रही है, तो ऐसा क्यों? तो फिर बाद में पता चला कुछ महीनों में ही वो हाथ उसका कट गया दुर्घटना में, और जैसे वो हाथ को पता चल गया था और उसका हाथ काटना पड़ा। ये जो सूक्ष्म आध्यात्मिक बातें हैं ये पकड़ में आ जाती है योगियों को कि कुछ होने वाला है, पता चल जाता है। जैसे विनोबा भावे ने भी कहा था शरद पूर्णिमा के दिन मैं शरीर छोड़ूंगा, बराबर उसी दिन उसने शरीर छोड़ा, विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। जैसे पक्षियों को भी तो पता चल जाता है क्या होने वाला है, साइबेरिया में कुछ पक्षी है बर्फ गिरने से बराबर 14 दिन पहले वो जगह छोड़कर चले जाते हैं वहां से, एग्जैक्टली 14 डेज, एक दिन इधर नहीं एक दिन उधर नहीं। जापान में कुछ पक्षी है जैसे भूकंप आने वाला है वो उस स्थान से निकल जाते हैं, ये उनके पास अतीन्द्रिय शक्तियां डेवलप हो जाती है कुछ। मनुष्य ही है जिसमें यह शक्तियां कम है थोड़ी, क्योंकि उसके भी कुछ कारण है। एक तो कारण यह है कि वो मृत्यु से इतना भयभीत होता है कि क्या समझ पाएगा कि मृत्यु आने वाली है, पहले इतना डरा हुआ रहता है मृत्यु से, ये शक्तियां डेवलप नहीं होती है सामान्य व्यक्ति में, हमेशा डर बना रहता है, हमेशा अपनी मृत्यु 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 से तो भागता है व्यक्ति। कोई ऐसा सोचता है यहाँ अगर कोई गृहस्थी को लाके बिठाओ और उसको कहो उसके काम में वैराग्य बोलोगे तो भागेगा वो, ऐसे डरते ये शब्दों से, वैराग मृत्यु संन्यास त्याग और तपस्या, उसको तो अपनी पत्नी और बच्चे और इतना मोह होता है कि उनमें से किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, इतना सा कोई किसी को खरोच आ गई तो सारा हॉस्पिटल हिला देते 10 जगह फोन और इधर उधर, इतनी सी होगी तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बुलाते हो खुजली को ठीक करने के लिए, तो इतना उसमें मोह होता है। हाँ वही मतलब इतना ये होता है उसमें, तो इसके वजह से वो अतीन्द्रिय शक्तियां डेवलप नहीं हो पाती है। परंतु जो योगी होता है वो अभ्यासरत रहते हैं। जैसे और एक उदाहरण है कि हम जब सो रहे हैं ना, सोने के लिए जाते हैं, और नींद आ जाना और जागृत इसके बीच की जो अवस्था है वो एक पल, वो हजार पलों के बीच का एक पल होता है, उसमें वो घटना घटित होती है कि जिसमें हम जागृत हैं और सो गए। योगी इसके ऊपर काम करते हैं कि वो कौन सा क्षण है कि जिस समय निद्रा आ गई, उस क्षण में स्थित हो जाना और उसको पकड़ना। मतलब निद्रा भी तो एक रीति से मृत्यु ही है, मतलब मृत्यु में जाने का वो जो समय है वो उस पे भी काम करते हैं कुछ लोग कि अभी हम लेट गए और कब नींद आ गई, वो जो क्षण है बहुत ही सूक्ष्म है, वो पकड़ में नहीं आता है। कोई नहीं कह सकता कि मुझे इतने बजकर बरबर इतने सेकंड में नींद आ गई, कौन कैसे कहेगा। योगी अपनी शक्तियां इस तरह से डेवलप करता है कि वो जो एक 1000 पार्ट ऑफ 1 सेकंड, एक पल का 1000वां हिस्सा, उस 1000वें हिस्से में वो नींद आ जाती है, उस पर काम करते हैं। इसके लिए फिर उनको मृत्यु आने से बहुत दिन पहले या पहले ही पता चल जाता है कि वो इस समय आने वाली है। इतना सूक्ष्म स्तर पर काम करते हैं योगी लोग, ताकि संसार के कई लोगों को ये पता चला है, सबको नहीं, जो साधना रत है, जो हट योगी होते थे उनको ये पता चल जाता था, जो अपने शरीर के मालिक है, शरीर की वासनाएं और शरीर की इच्छाएं और शरीर के आकर्षण से जो हमेशा ही मुक्त रहे, जो कि चिंतन के रस में रहे, विचारों के स्तर पर जो रहते हैं, एक है देह के तल पर रहना, एक है विचारों के तल पर जिनका आनंद है, उसमें दार्शनिक, उसमें कवि, उसमें कोई रहस्यवादी, उसमें वो सारे लोग नास्तिकवादी भी आ जाते हैं उसमें, जो कि उनको जीवन के रहस्यों को जो ढूंढते हैं वैज्ञानिक लोग, ये जो है वो शरीर के भान से ऊपर रहते हैं, चाहे आध्यात्मिक हो या ना हो इसका कोई संबंध नहीं है, परंतु वो शरीर के तल पर उनका आनंद नहीं है, काम से तो वो एकदम मुक्त है, जैसे काम से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है, काम विकार से वो अपने काम, अपना जो कार्य है उनका, उसमें वो रस रसयुक्त तो उनकी अवस्था होती है वहां पर, वही वो विचारों के आनंद में रहते हैं। उसमें नास्तिकवादी जो भी है वो भी इसी तरह से बहुत सूक्ष्म रीति से, जो निसर्ग प्रेमी है वो भी शरीर के तल से ऊपर रहते हैं। तो ये सारे जो लोग हैं, ये इनको थोड़ा सा पता चल जाता है बहुत सारे रहस्य सृष्टि के, कैसे सब चीजें कार्य कर रही है। तो अपने ही मृत्यु के दृश्य को देखना, ये एक योग का प्रकार। बाबा भी तो करा देते ना, लेट जाओ और वो सफेद उड़ा दो शो सुन, और देखना आनंद आता है उसको। शरीर से बाहर निकलते ही, क्योंकि सारा दुख तो इस शरीर में है, शरीर से बाहर निकल कर ही आत्मा मुक्त हो जाती है। और देखना लोगों की प्रतिक्रिया, हम सोच रहे हमसे बड़ा कोई नहीं है, हमसे अच्छा कोई नहीं, ये कार्य हम जाने के बाद 10 गुना अच्छा करके करने वाला आ जाएगा वहां पर, और हम सोचते हैं कि मैं अगर चला गया तो ये कार्य कौन करेगा, मेरी जगह कौन लेगा। अरे तुम जाओ तो सही, अच्छा वाला आ जाएगा वहां पर। सेवा इतनी आगे बढ़ जाएगी, तुम्हारे वजह से ही रुकी है ये, तुमको मृत्यु के बाद पता चलेगा। तो ये स्वयं की चेकिंग भी एक रीति से, स्वयं का अहंकार है, इसको ठेस लगती है ये संकल्प से। कभी मानने को तैयार नहीं होता है व्यक्ति कि मेरे से भी अच्छा कोई है, या मेरे से भी अच्छा कोई कर सकता है। मृत्यु की बातें, मृत्यु की चर्चा व्यक्ति को हमेशा से थोड़ा सा उसको ये करती है, परंतु मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, शाश्वत सत्य है। निरंतर मृत्यु का चिंतन करना ये योगी का लक्षण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। योगी वह जो दर्शन करता है, जो देखता है साक्षी होकर, किसको, जन्म को। जन्म में क्या क्या दुख है, आत्मा की जो अवस्था है जन्म में, वो माँ के गर्भ में है, कितना दुखी है वहां पर, इतनी सी जगह में वो है, वो वहां हाथ हिला नहीं सकता, पैर हिला नहीं सकता, ऐसा उल्टा है। और मुंह में कुछ कुछ जाते रहता है उसको, एमनियोटिक फ्लूइड, और वहां से चिल्लाता है जोर जोर से, हे प्रभु छुड़ाओ मुझे इस कैद से, इस जेल से, इस कारागृह से।
जो आवाज करता है
वो वहां की बात नहीं, यहाँ कलयुग की बातें चल रही है। गर्भ महल में तो वो गर्भ, ये गर्भ जेल है, उसमें वो पुकारता है जोर जोर से, चिल्लाता है कि सारा उसको स्मृति आती है वहां पर कि क्या क्या पाप किए इसके पहले शरीर में, वो सारे उसको याद आता है। वो कहता है कि ऐसे पाप अभी वापस नहीं करूंगा, निकलूंगा तो बस साधना करूंगा, भक्ति करूंगा, जो करूंगा सब तुम्हारे लिए करूंगा। और निकलते ही खलास खलास, कुछ नहीं करता है, वापस संसार में बंध जाता है। भूल जाती है आत्मा, निकलते ही जिस घर में जाता है वहां के मोह बंधन चालू हो जाते, नए नए माँ बाप बहन भाई आगे आगे और एक 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 के बाद एक नए नए बंधन आते जाते हैं, और वो सोचता है बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा, बाद में करूंगा। हाँ, आगे वही संस्कार हो जाते, और देह भान के संस्कार। अच्छा, अगर कोई आत्मा पूर्व जन्म में जिसने साधना की है वो अगर है, तो कुछ ही समय में ऐसा कोई मिल जाता है उसको कि अपनी साधना पुनः आरंभ कर देता है वहां से। पांचवी क्लास में थे, ट्रांसफर हो गई, माउंट आबू आ गया बच्चा, यहाँ पे छठवी में एडमिशन मिलती है उसको। वैसे इधर भी जो साधना की, जहाँ जो योग भ्रष्ट योगी का क्या होता है, अर्जुन पूछता है कृष्ण को गीता में कि वह कि जो योग साधना करते हुए योग भ्रष्ट हो गया उसकी क्या गति है। वो कहता है अगले जन्म में वो वहीं से अपनी साधना को आरंभ करता है। इसके लिए किसी किसी को एकदम छोटेपन में ज्ञान मिल जाता है, छोटेपन से शास्त्र कंठ कर लेते हैं। संसार में भी लोग वो है ही ऐसी वैसी आत्मा थी योगी, भोगियों के घर में जन्म लिया पर कोई रस ही नहीं है भोग विलास में, वो मंदिर जाना अच्छा लगता है उसको। हाँ, वो जो भी है, कोई कला है, कोई संगीत है, कोई भी जो साधना कर रहा है, 50 साल से क्रिकेट खेल रहा है, वो कहाँ जाएंगे, वो बचपन से ही क्रिकेट में रुचि रहेगी उसको। तो वो एक पूर्व जन्म के संस्कार, माँ बाप से लिए हुए संस्कार, दोस्तों से लिए हुए संस्कार, अपने खुद के संस्कार, 5 प्रकार है वो। व्यक्ति के संस्कार कौन कौन से, एक तो वो कि जो पूर्व जन्म से आए हुए, कुछ संस्कार वो खुद डेवलप करता है जैसे जैसे आगे बढ़ता है, कुछ संस्कार माँ बाप को देखकर, कुछ संस्कार मित्रों के द्वारा, ऐसे चार पांच प्रकार है, उसके आधार पर व्यक्ति की डेवलपमेंट होती है। जी वो चलते रहता है वो क्रम, मतलब यही मैं कह रहा हूँ कि प्रभावशाली कौन से संस्कार है। इस जन्म के संस्कारों का आधार पूर्व जन्म के संस्कार है, प्लस इस जन्म के भी बहुत सारे संस्कार वो क्रिएट करता है नए नए परिस्थिति अनुसार। केवल वो पूर्व जन्म में केवल क्रिकेट ही तो नहीं खेला, और भी बहुत सारे संस्कार होंगे, और भी बहुत सारे हिसाब किताब होंगे। किसी को दुख दिया होगा, किसी का पैर तोड़ा होगा, तो इसका भी पैर टूटेगा, वो रुक जाएगा क्रिकेट से। बहुत सारा कुछ हो सकता है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है सब, जटिल है सारा, एक चीज पर आधारित नहीं है कुछ भी, सब कुछ सारा सम टोटल ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ मिलाकर ये बनता है यहाँ का। तो कहाँ थे हम, बात चालू थी ना? नहीं नहीं संस्कार से बात, पुनर्जन्म। तो आत्मा जहां से साधना करना छोड़ती है वहीं से साधना वहां पर आरंभ करती है। इसके लिए साधना कंटिन्यूस चालू रहे। वो जो गर्भ में रहते हैं, हाँ गर्भ में जब रहता है तो दुख, तो जन्म में दुख, योगी अर्थात जन्म के दुख का चिंतन करना, जन्म मृत्यु, फिर मृत्यु के दुख, मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, मृत्यु को देखना, मृत्यु को समझना क्या है, तो ही इस संसार से वैराग्य आता है। नहीं तो संसार में मोह रहता है हमारा, ये देह भी कब तक चलेगी, इसको जाना ही है। और मृत्यु का, बाबा ने कहा मृत्यु कैसे बाप की याद हो, वो सारी अवस्था है मृत्यु की। कौन नहीं चाहता कि हमारी मृत्यु मधुबन में हो, पर होती है क्या? बहुत कम। मधुबन वाले इधर है, एक दिन के लिए उधर गए, वहां मृत्यु हो गई, क्या करे, कोई एक उधर रहते हैं सारी, एक ही बार आए और यहाँ मृत्यु हो गई, वैसा भी होता है। वो बीच में एक माता थी ना, आशीष भाई लेकर आ गए थे, शांति स्तंभ पर बैठी, कमरे में गई, खत्म। तो जन्म मृत्यु, फिर है जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, ये जो सौंदर्य और जो ये जो यौवन है ये हमेशा टिकने वाला है, चाहे कोई भी हो, कितना भी सुंदर सुंदरी हो, ये जर्जर होने वाला है, खत्म होने वाला है। क्षणिक सौंदर्य, क्षणिक आकर्षण है, जन्म मृत्यु जरा, फिर है व्याधि। व्याधि से कौन बचा है? कोई नहीं बचा है, चाहे कितना भी कोई भी हो, बीमारी तो आने ही वाली है, और ऐसी ऐसी बीमारी आएगी जिसका कभी हमने सोचा ही नहीं था। हाँ ऐसे ऐसे कि जो जिन्होंने सारा जीवन, अभी योगी हमारे यहाँ ही पर योगी सारा जीवन योग किया, सेवाएं की, पर फिर भी मृत्यु, फिर भी बीमारी ऐसी आई कि सोचते हैं इन्होंने क्या किया ऐसा, ऐसी बीमारी जो हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसी बीमारी आ सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियां। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनमें से जो दुख है उसका चिंतन करना, दुख दोषानुदर्शनम, दुख का दोष, ये दोष है इन सभी चीजों में, इसका बैठकर चिंतन करना वैराग्य को हमारे अंदर लाता है। नहीं तो वैराग्य कैसे आएगा, केवल विनाश सामने खड़ा है, और विनाश सामने खड़ा करते करते वैराग्य नहीं आता है केवल, वो तो केवल सुनने की बात होगी साकार मुरली में, विनाश सामने खड़ा है, मृत्यु विनाश 100% सत्य तैयारी हो रही है, ठीक है हो रही है, होने दो। मान तो हमारा मन तो अपने आप को समझता है, हमारी मन का ये भी एक विचित्र स्वभाव है कि वो कई लोगों को मरते हुए देखता है पर ये नहीं सोचता कि मैं भी जाऊंगा, बस ये नहीं सोचता, स्मशानी वैराग्य, मरकट वैराग्य जिसको कहते हैं, बंदर को जो वैराग्य आता है वैसा, मरकट, मरकट अर्थात बंदर, वो बंदर को एक ये रखते हैं ना, वो कहानी दिखाया मटका, उसमें चने कुछ रखते हैं, वो जाता है हाथ निकालता है, हाथ निकालता है तो हाथ फंस जाता है, हाथ फंसता है तो बहुत मार खाता है, बहुत मार खाता है, फिर सोचता है कि अगली बार नहीं डालूंगा हाथ, बहुत मार मिलती है ऐसे हाथ डालने से, वहां से छूट के जाता है, फिर अगली बार वापस देखता है, वापस हाथ डालता है, जो अनुभव उससे कुछ सीखा ही नहीं, इसको मरकट वैराग्य कहा जाता है, क्षणिक वैराग्य आता है बस। उसी तरह शमशान घाट में जाओ तो वहां पर खड़ा है व्यक्ति, आग की लपटें उठ रही है, देखता रहता है, देखता रहता है, सोचता है सब कुछ व्यर्थ है, ये जीवन व्यर्थ है, ये धन, ये संपत्ति, ये पत्नी, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ नष्ट हो जाने वाला है, मैं भी एक दिन ऐसे ही चला जाऊंगा इस दुनिया से, ऐसा ऐसा विचार करते रहता है, देखते रहता है, विचार करते रहता है, देखते रहता है, सन्नाटा है, वैराग्य के वाइब्रेशन है, वातावरण है, और जैसे घर जाता है पत्नी बच्चे और ये सब देखते ही और जस का तस, इसको कहा जाता है जस का तस, जैसे थे जो चालू था बस इधर चालू हो गया। जाना ही चाहिए, सबसे अच्छा बेस्ट प्लेस वैराग्य उत्पन्न करने का, वो मैंने कहा था ना, बुद्ध के पास कोई भी व्यक्ति आता था वो कहता था मुझे संन्यास लेना, अभी पहले ही वो थोड़ा वैरागी स्वभाव वाला व्यक्ति ही जाएगा इस तरह के मार्ग में, जो उसको कहता था कि मुझे संन्यास लेना है, तो कहता था कि पहले 3 मास जाकर शमशान घाट पर बैठो, सुबह से लेकर रात तक केवल एक ही चीज देखनी है, लोग लेके आ रहे हैं, लाश आ रही है और उसको जलाया जा रहा है। कैसे कोई रोक पाएगा अपने मन को वैराग्य उत्पन्न होने से, क्योंकि ये दृश्य रोज कोई देखेगा, क्योंकि ये वो ये साधक की बात चल रही है, वो पहले से ही थोड़ा उसमें वैराग्य है, संसार उसको पहले से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पहले से ही वो पूर्व जन्म की साधना और टेंडेंसीज है वैराग्य की, तो यहाँ तो केवल उसको और प्रज्वलित करना है, तो उसको कहता था केवल वहां जाके बैठो, सुबह से लेकर शाम तक बस एक ही काम करो, 3 मास तक देखना है बस, लोग आ रहे हैं, सारे लोगों को भी देखते रहना, लाश लेके आ रहे हैं, बैठ रहे, चिल्ला रहे, रो रहे, क्या उनकी प्रतिक्रिया होती है, मृत्यु। और फिर अच्छा करते हैं, कई लोग करते हैं साधना, शमशान ये जो शंकर जी को दिखाया है भक्ति में क्या लगाए करते हैं, राख, राख किसका प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, राख इधर भी लगाते वो वैराग्य का प्रतीक है, वो ये दिखाने के लिए कि सब कुछ नष्ट होने वाला है, कुछ भी नहीं बचेगा, नेस्तो नाबूद, सब कुछ खत्म, संसार की चीजें, वो राख राख हो जाने वाला है, ये स्मरण स्मृति दिलाने के लिए राख उसका प्रतीक है, वैराग्य का प्रतीक है, वो भगवे वस्त्र, ये रघु वस्त्र और राख, ये दोनों चीजें वैराग्य को दर्शाते हैं। तो निरंतर अपने मन में वैराग्य लाने के लिए मृत्यु का चिंतन, जन्म का चिंतन, जरा और व्याधि का चिंतन करते रहना, बीच बीच में थोड़ा हॉस्पिटल चक्कर लगाते रहना ऐसी विजिट किसी को देखने के लिए नहीं, कभी पूछे तो बोल देना किसी को देखने गए थे पर वो मिला ही नहीं कौन से वार्ड में, यार छुट्टी हो गई क्या, अच्छा डिस्चार्ज हो गया, हमको लगा अभी भी है तो थोड़ा देख के आना उधर कैसे होता है मृत्यु, आईसीयू में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाओ, मैं हिंदुजा में था, वो 20-बेडेड आईसीयू, वहां पे 10-15 पेशेंट तो वेंटिलेटर पे रहते थे, और वो भी एक दो दिन से नहीं, 10-15 दिन से वेंटिलेटर पे चालू है उनका, कुछ 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 वो खींचते हैं वहां पर, ये करो वो करो ये करो वो करो, इतना एक एक दिन में दो दो तीन तीन डेथ्स, आज ये गया कल वो गया, अभी भी हमारे आईसीयू में अभी 10 मिनट पहले एक पेशेंट की डेथ हो गई, कल रात में और एक डेथ हो गई कल शाम को।
ऐसी बात है कि अभी वो माता
उसके हार्ट की ट्रिपल वेसल डिसीज, मतलब जितनी नसें है सारी की सारी ब्लॉक, एक दूसरा किडनी, तीसरा लंग्स का प्रॉब्लम, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था, एक बार स्ट्रोक हो चुका है, डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, बीपी, तो ये सारे जो मेन ऑर्गन्स है बॉडी के, और वो फिर भी चल रही थी और लेके आए, तो मैंने बोला ये तो कभी भी एनी टाइम, और कल यहाँ से जाते समय वो मिले बाहर, बोले कैसे है, मैं बोला एनी मोमेंट, और उसके 10 मिनट के बाद वो चली। अभी जो 10 मिनट पहले पेशेंट ने शरीर छोड़ा, एक माता जी, उसके हार्ट में छेद था, कब से उसको 4 साल से कह रहे हैं ऑपरेशन करो करो करो, वो कहता नहीं बी आवे, डर लगता है नहीं करेंगी वो एक ही कारण था, डर लगता है ऑपरेशन से, बहुत समझाया हर प्रकार से, कई लोगों ने समझाया, अभी कल लेके आए तो बहुत ही बुरी हालत थी, अभी 10-15 मिनट पहले शरीर छोड़ दिया। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जीवन का, केवल साक्षी होकर देखेंगे तो उससे देह से वैराग्य आ जाता है, जिस देह के प्रति व्यक्ति लालायित रहता है, आकर्षित रहता है, जिसे देखना चाहता है उसके सौंदर्य को, वो क्या है, मांस पिंड बस वही है वो। उस सत्य को देखना और साक्षी होकर देखना तो उससे वैराग आएगा। तो चारों ही चीजों का दिन भर दिन रात दिन भर बीच बीच में चिंतन करने रहा। वैराग्य की चर्चा बहुत ही कम है ब्राह्मण परिवार में, बाकी सारी चर्चा है, वैराग्य की चर्चा सबसे कम है। बाप समान बनना, फॉलो फादर करना, लक्ष्मी नारायण बनना, इसकी चर्चा ज्यादा है जो कि बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आता करना क्या है, बस बाप समान बनना नेक्स्ट व्हाट। पर वैराग की जो चर्चा होती है सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये देह ही खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। एक्सट्रीम वैराग्य वैराग्य की बहुत जरूरत है वो भी, पर बाबा जो कहते हैं हद बेहद, बेहद का वैराग्य, इसी देह में रहते हुए सब कुछ देखते हुए, उसमें कोई वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, वो कोई उस तरह का वैराग्य नहीं है। ये वैराग्य है रियल वैराग्य, सत्य जो है उसको वैसा ही देखना, ये जीवन है उसकी ये सत्यता है। और जो संसार वाले जो है ये टीवी और ये फिल्में, उन्होंने सत्यता को पूरा भ्रमित कर रखा है, संसार को कुछ और ही दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे बंधन दिखा रहे हैं, ऐसे ऐसे इमोशनल बॉन्ड्स दिखा रहे हैं कि जिससे जीवन की वास्तविकता से कहीं दूर लेके जा रहे हो, और व्यक्तियों को वो सत्य लग रहा है, सत्य वो नहीं है, सत्य कुछ और है। तो वो सत्य को देखना, ये तो भ्रमित कर दिया है सबको, सभी ने, जितने मैगजीन और जितने उपन्यास और जितने अवार्ड्स मिलते हैं कि अच्छी अच्छी किताब, वो सारी किताबें ही भ्रमित करने वाली है,
भी बहुत
वो शास्त्र मतलब वो सभी अभी जितने सीरियल्स बना रहे हैं वो इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं, इतिहास को वैसा ही नहीं दिखा रहे जैसा है। अगर कोई भी सीरियल देखो तो वो उसके साथ में इतना उसको रोमांटिक बना रहे हर चीज को, चाहे वो कौन सा हो, महादेव वाला हो, एक सीरियल, उसमें सत्य क्या है और दिखा क्या रहे, कुछ मतलब हर चीज में वो इमोशंस डाल रहे हैं, हर चीज में मतलब एंटरटेनिंग मनोरंजन का साधन बना रहे बस, परंतु एट द कॉस्ट ऑफ हिस्ट्री। ऐसे कुछ कुछ भी है जो इतिहास के साथ में ये कर रहे, वो किस लिए कर रहे हैं, कमर्शियल पर्पस है उनका। तो वो आध्यात्मिक चेतना को कैसे जागृत करेंगे, जो काम कर रहे हैं, चलो कोई धार्मिक सीरियल है या कोई धर्म का बात है, परंतु उसमें काम करने वाले जो एक्टर है उनकी आध्यात्मिक कैलिबर पोटेंशियल, उनका साधना कितनी है, बिल्कुल भी नहीं है, वो तो केवल कमर्शियल पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो उसका प्रभाव भी कितना पड़ेगा, उतना ही पड़ेगा जितना उनका स्पिरिचुअल कैलिबर है, जितनी उनकी प्रतिभा है आध्यात्मिक उतनी है, उतना ही प्रभाव डालेगा वो इसके लिए, कोई संबंध नहीं है। वो तो है, डिस्क्लेमर दे देते हैं, बट कर तो रहे हैं ना, उसका प्रभाव तो पड़ता है, देखने वाले तो देखते हैं, और जो देख रहे हैं वो केवल वो ही नहीं देखते, साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। ऐसा होता कि केवल रामायण दिखा रहे तो केवल रामायण ही देखे तो शायद उस रामायण का प्रभाव पड़े, पर रामायण दिखा रहे अभी अभी कुछ डांस भी देख रहे हैं, अभी कुछ और भी देख रहे हैं, अभी अभी वो भी देख रहे, ये भी देख रहे, वो भी देख रहे, और मन की ऐसी टेंडेंसी है कि जो सबसे खराब चीज है वो उसको पकड़ लेता है, अच्छी चीजें है उसको छोड़ देता है, जो अच्छी चीजें दिखाई उसको याद नहीं रहती, और कुछ खराब चीज दिखाई वो याद रहती है, ये मन का स्वभाव है। इसके लिए ये जो है, यहाँ जो मम्मा कह रही है कि ये अभ्यास करना हमको, अभी शरीर में आना और शरीर से बाहर जाना, शरीर को मृतवत देखना, तो यहाँ बाबा ने दो बार भेजा मम्मा को, चक्कर लगाने के लिए भेजा था कि अनुभव करो कि शरीर के बंधन वश आत्मा का क्या हाल होता है, और शरीर के बंधन से मुक्त आत्मा उसी शरीर में जाती है तो कैसा अनुभव होता है, वह अनुभव करके आओ। भले ही दो बार आई लेकिन ऐसा लगा जैसे कि कोई पराई जगह चक्कर लगाने आई हूं, शरीर में आते हुए, ये भी योग का अभ्यास है, शरीर में आके ऐसे देखना जैसे कि क्या ये कौन सी दुनिया है मैं जिसको देख रही हूँ, ये तो एकदम नया लग रहा है सब कुछ। हाँ, मम्मा ने रात को दो बार, ये तो गुप्त बात है, और शरीर बहुत ठंडा हो चुका था इसलिए भले ही आत्मा प्रवेश हुई लेकिन चुरपुर नहीं हुई, आत्मा कॉर्पस मोर्टेलिस, वो कॉर्पस मोर्टेलिस होता है, कड़क होने की प्रोसीजर चालू हो जाती है शरीर की, तो लेकिन चुरपुर नहीं हुई, बाकी मैं आकर देख गई थी,
योग काम कर गया, वापस
आए। हाँ। स्पिरिट इज रेडी बट फ्लैश इज वीक, बाइबल में एक वाक्य है, स्पिरिट इज रेडी, आत्मा हमारा है, तैयार है, परंतु ये शरीर जो है वो कमजोर है। इस पर हमने कहा, मम्मा जाते जाते हम आपको 4 से 5 बजे तक 2-3 बारी चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक सी महसूस हुई। किसी किसी को महसूस हुआ होगा 4 से 5, या अपने मन का भ्रम होगा कि माँ आई बोलने में क्या जा रहा है, हमको लगा भाई आई, थोड़ा थोड़ा लगा, थोड़ा सा चमक आई थी ये बताया तब, पहले नहीं बताया, बाद में। और सबसे मिल रही है क्योंकि कंफर्म हो गया ना, ये बताया तो क्या हमको भी टचिंग हुई है, ऐसे बता सकते बाद में ना, मम्मा ने जब बताया मैं 2 बार आई थी तब, तो शायद मम्मा आप यही टाइम पे आए होगी जब हमको लगा 4 से 5, मतलब हमारी लाइन क्लियर है ऐसी रुहान कर स्थूल वतन लौट आई। तो ये था 5। गुलजार दादी स्थूल वतन लौट आई। तो ये था 5वें दिन का संदेश। कल पढ़ेंगे 6ठा दिन, फिर है 7वां दिन, फिर है 12वां दिन का लंबा संदेश। तब तक 24 तारीख आ जाएगी। ओम शांति।